एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे दर्शन की गहराई में उतर रहे हैं जिसका नाम, मतलब आजकल हर तरफ सुनाई देता है, स्टोइकवाद। सेल्फ हेल्प से लेकर बिजनेस लीडरशिप तक हर कोई इसकी बात कर रहा है।
हाँ बिल्कुल, और अक्सर इसे बस मुश्किल हालात में शांत रहने या शायद अपनी भावनाओं पर काबू पाने का एक तरीका बस ऐसे ही देखा जाता है।
सही कहा।
लेकिन क्या ये सिर्फ इतना ही है
या कुछ ज्यादा गहरा है इसमें?
आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे ब्रैड इनवुड की किताब स्टोइसिज्म के जरिए। हमारा मिशन है ये समझना कि स्टोइकवाद सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक से कहीं ज्यादा है, मतलब एक पूरा जीवन जीने का नजरिया कैसे है।
और ये आज के दौर में जरूरी भी लगता है, क्योंकि जहां एक तरफ स्टोइक विचार इतने पॉपुलर हो रहे हैं, वहीं सच कहूं तो उन्हें कई बार बहुत सतही तौर पर समझा जाता है। इनवुड हमें इसकी जड़ों तक ले जाते हैं।
हाँ ये जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले लेखक से ही शुरू करते हैं। ब्रैड इनवुड, ये कोई साधारण लेखक नहीं है ना?
बिल्कुल नहीं। वो येल यूनिवर्सिटी में दर्शन और क्लासिक्स के प्रोफेसर हैं, और इससे पहले टोरंटो यूनिवर्सिटी में काफी लंबे समय तक पढ़ा चुके हैं।
अच्छा।
हाँ, और उन्हें प्राचीन यूनानी और रोमन दर्शन, खासकर वो हेलेनिस्टिक काल, मतलब जिस दौर में स्टोइकवाद पनपा, उसका दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञों में गिना जाता है। उनकी लिखी किताबें, संपादित ग्रंथ, वो इस विषय पर मील का पत्थर मानी जाती हैं।
तो उनकी खास बात क्या है, मतलब क्यों हम उनकी बात पर ध्यान दें?
देखिए, इनवर्ड की खूबी ये है कि वो जो पुराने मुश्किल विचार है ना, उन्हें पूरी ईमानदारी और सटीकता के साथ आज के पाठकों के लिए आसान बनाते हैं। वो स्टोइकवाद को उसके असली ऐतिहासिक रूप में देखते हैं। ऐसा नहीं कि उसे तोड़ मरोड़ कर आज के फैशन के हिसाब से पेश कर दिया।
हाँ ये बहुत होता है आजकल।
बिल्कुल। वो उन आम गलत फहमियों को दूर करते हैं जो स्टोइकवाद को लेकर फैली हुई हैं। जैसे ये कि स्टोइक होने का मतलब है बस भावनाओं को दबा देना, पत्थर बन जाना।
अच्छा, तो ये सिर्फ कठोर बनो वाला मामला नहीं है। चलिए अब आते हैं किताब पर। इनवुड की इस किताब का मेन मकसद क्या है?
देखिए, जैसा हमने कहा, स्टोइकवाद को अक्सर टुकड़ों में देखा जाता है, खासकर उसकी नैतिकता या जीवन जीने की जो सलाहें हैं, बस उन पर ध्यान दिया जाता है।
हाँ वही कंट्रोल वाली बात, मुश्किलों में शांत रहो।
हाँ वही सब। तो इनवुड का तर्क है कि ये नजरिया अधूरा है। वो इस किताब में स्टोइकवाद को एक संपूर्ण और आपस में गहराई से जुड़ी हुई दार्शनिक प्रणाली के रूप में पेश करते हैं।
एक पूरा सिस्टम, मतलब सिर्फ कुछ अच्छे विचारों का कलेक्शन नहीं।
बिल्कुल। किताब का जो मूल आइडिया है वो ये है कि स्टोइक नैतिकता, जो आज सबसे मशहूर है, उसे आप तब तक ठीक से समझ ही नहीं सकते जब तक आप उसके पीछे के लॉजिक, मतलब तर्कशास्त्र, और फिजिक्स यानी भौतिकी को न समझें।
ओह, लॉजिक और फिजिक्स भी?
हाँ, ये तीनों हिस्से एक दूसरे पर टिके हैं। ये सिर्फ भावनाओं को संभालने का कोई टूल किट नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने और उसमें अपनी जगह समझने का एक पूरा नजरिया है, एक पूरा माइंडसेट है।
और किताब का जो सेंट्रल तर्क है, वो कौन सी एक बात है जिस पर इनवुड सबसे ज्यादा जोर देते हैं?
वो कहते हैं कि स्टोइकवाद का जो सबसे प्रसिद्ध आदेश है, प्रकृति के अनुसार जियो, ये कोई ऐसी अस्पष्ट सी अच्छी लगने वाली बात भर नहीं है। ये एक बहुत ही तकनीकी निर्देश है, और इसका असली मतलब समझने के लिए आपको स्टोइक्स की ब्रह्मांड की समझ को जानना होगा। वो मानते थे कि ब्रह्मांड तर्कसंगत है, उसका एक निश्चित विधान है, और वो एक तरह से दिव्य भी है। इसी समझ के आधार पर प्रकृति के अनुसार जीना संभव होता है।
दिलचस्प। तो ये किताब हमें स्टोइकवाद की पूरी तस्वीर दिखाती है, मतलब उसकी जड़ों से लेकर फलों तक। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। इनवुड इसे कैसे परत दर परत खोलते हैं?
बिल्कुल। इनवुड हमें पहले स्टोइक स्कूल की शुरुआत में ले जाते हैं। ये दर्शन प्राचीन ग्रीस में लगभग 300 ईसा पूर्व जीनो नाम के एक दार्शनिक ने शुरू किया था।
जीनो? हाँ सुना है।
हाँ, जीनो ऑफ सिटियम, वो एथेंस में एक रंगीन बरामदे में, जिसे स्टोआ पोइकेले कहते थे, वहां पढ़ाते थे, और उसी स्टोआ से स्टोइक नाम पड़ गया।
अच्छा, ये कहानी है इसके नाम की?
हाँ, और ये वो दौर था जब समाज में काफी उथल पुथल थी, लोग जीवन में स्थिरता और मायने ढूंढ रहे थे।
और जीनो अकेले तो नहीं थे, उनके बाद भी कई लोग आए।
हाँ बिल्कुल, उनके बाद क्लियंथिस और खासकर क्राइसिपस जैसे दार्शनिकों ने स्टोइक विचारों को और विकसित किया, उन्हें व्यवस्थित किया। क्राइसिपस को तो दूसरा संस्थापक भी कहते हैं।
दूसरा संस्थापक क्यों?
क्योंकि उन्होंने ही स्टोइक सिद्धांतों को तर्क की कसौटी पर कसा और उन्हें एक ठोस, मतलब एक व्यवस्थित रूप दिया। यहीं पर वो मशहूर उपमा आती है जो स्टोइक दर्शन की एकता को समझाती है।
हाँ, वो खेत वाली।
हाँ, वो कहते थे कि दर्शन एक खेत की तरह है, तर्क उसकी बाड़ है, भौतिकी उसकी उपजाऊ मिट्टी है और नैतिकता उसमें उगने वाला फल है।
या फिर अंडे वाली उपमा भी है ना?
हाँ, वो भी है। तर्क खोल है, भौतिकी सफेदी और नैतिकता जर्दी। मतलब साफ है, आप सीधे फल या जर्दी तक नहीं पहुंच सकते, आपको पहले बाड़ और मिट्टी या खोल और सफेदी को भी समझना होगा।
ठीक है, तो चलिए पहले बाड़ यानी तर्कशास्त्र को देखते हैं। स्टोइक्स के लिए इतना जरूरी क्यों था? सिर्फ बहस करने के लिए?
नहीं नहीं, बहस के लिए नहीं। उनके लिए ये बेहद जरूरी था क्योंकि उनका मानना था कि इंसान के ज्यादातर दुख, उसकी ज्यादातर परेशानियां गलत सोच और गलत फैसलों से आती हैं।
ये तो सही लगता है।
अगर हम दुनिया को सही तरह से समझें, सही तर्क करें, सही ढंग से सोचें, तो हम सही जीवन जी सकते हैं। इसलिए उन्हें सत्य तक पहुंचने का, मतलब सच जानने का, एक भरोसेमंद तरीका चाहिए था।
और वो तरीका क्या था? कोई खास टेक्निक?
हाँ, उनका मानना था कि कुछ धारणाएं या विचार, जिन्हें वो इम्प्रेशंस कहते थे, वो इतने स्पष्ट और सटीक होते हैं कि वो अपनी सच्चाई की गारंटी खुद देते हैं। उन्हें वो कैटालिप्टिक फैंटेजिया कहते थे।
क्या?
कैटालिप्टिक फैंटेजिया, आप इसे एक तरह की अचूक, बिल्कुल साफ समझ कह सकते हैं, एक ऐसी धारणा जिस पर शक की गुंजाइश न हो।
अच्छा,
तो स्टोइक ऋषि, जो उनका आदर्श ज्ञानी व्यक्ति था, वो सिर्फ ऐसी ही पक्की समझ पर भरोसा करता था, सुनी सुनाई बातों या धुंधली धारणाओं पर नहीं। लक्ष्य था बिल्कुल साफ सोचना ताकि सही कर्म किया जा सके।
सोच में स्पष्टता कर्म में स्पष्टता लाती है, ये बात तो समझ आती है। अच्छा, अब आते हैं मिट्टी पर, यानी फिजिक्स, ब्रह्मांड के बारे में उनके विचार। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता, दर्शन में ब्रह्मांड की बातें?
हाँ, ये हिस्सा शायद आज के लोगों को सबसे अजीब लगे, पर जैसा मैंने कहा, स्टोइक नैतिकता को समझने के लिए ये बेहद जरूरी है। इनवर्ड इसे बहुत साफ समझाते हैं। कुछ मुख्य बातें हैं इसमें।
बताइए।
पहली, वो मानते थे कि इस दुनिया में जो कुछ भी सचमुच मौजूद है वो भौतिक है, मतलब उसका शरीर है, मैटर है।
सब कुछ, आत्मा भी, ईश्वर भी?
हाँ, यहाँ तक कि आत्मा और ईश्वर भी। ये आज की सोच से काफी अलग है ना?
हाँ, बहुत अलग।
दूसरी बात, वो मानते थे कि पूरा ब्रह्मांड वो बस चीजों का ढेर नहीं है, वो एक जीवित, तर्कसंगत और एक तरह से दिव्य प्राणी है।
पूरा ब्रह्मांड एक जीवित प्राणी?
हाँ।
और इसे एक सक्रिय सिद्धांत चलाता है जिसे वो लॉगोस या तर्क कहते थे।
हाँ,
आप सोचिए, जैसे ब्रह्मांड का अपना एक इंटेलिजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हर चीज में मौजूद है और उसे आकार दे रहा है, उसे चला रहा है।
और हम,
हमारी तर्क शक्ति,
हमारी अपनी तर्क शक्ति, हमारी सोचने समझने की काबिलियत, वो इसी बड़े ब्रह्मांड तर्क का एक छोटा सा हिस्सा है, एक चिंगारी है कह सकते हैं।
तो हम सब उस बड़े सिस्टम का हिस्सा है।
अच्छा, और इसी से शायद उनका वो नियतिवाद का विचार आता है कि सब कुछ पहले से तय। ये थोड़ा डिमोटिवेटिंग नहीं लगता कि कुछ भी कर लो, होना वही है जो लिखा है?
यही तो दिलचस्प बात है। इनवर्ड समझाते हैं कि स्टोइक्स के लिए ये निराशाजनक नहीं था, बल्कि सुकून देने वाला था।
सुकून कैसे? उनका मानना था कि क्योंकि ब्रह्मांड तर्कसंगत है और एक दिव्य योजना, एक डिवाइन प्लान के अनुसार चल रहा है, तो जो हो रहा है वो होना ही है, वो उस बड़ी योजना का हिस्सा है। उसे स्वीकार करना, यानी अपनी इच्छा को ब्रह्मांड की इच्छा के साथ मिला लेना, यही समझदारी है। उससे लड़ने का कोई फायदा नहीं, वो इसे भाग्य, फेट या नियति कहते थे।
मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे स्वीकार कर लो, ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है आजकल की बातों से।
हाँ, ये उनके कंट्रोल के सिद्धांत, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल से जुड़ता है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। भौतिकी का एक और जरूरी आइडिया था सिंपैथिया, यानी सब कुछ आपस में जुड़ा है। जैसे एक शरीर के अंग, ब्रह्मांड में कहीं कुछ होता है तो उसका असर सब पर पड़ता है। तो इस पूरी भौतिकी ने, इस फिजिक्स ने, उस प्रकृति को परिभाषित किया जिसके अनुसार उन्हें जीना था। कैसी प्रकृति? एक तर्कसंगत, व्यवस्थित, आपस में जुड़ी हुई और नियति द्वारा संचालित प्रकृति।
ठीक है, तो तर्क की बाड़ लग गई, भौतिकी की मिट्टी तैयार हो गई। अब आते हैं आखिरकार फल पर, यानी नैतिकता। ये कैसे उन दोनों पर टिकी है, ये कड़ी कैसे जुड़ती है?
पूरी तरह से नैतिकता की शुरुआत होती है एक कॉन्सेप्ट से जिसे वो ओइकियोसिस कहते थे। इसका मोटा मोटा मतलब है अपनापन या जुड़ाव।
ओइकियोसिस,
ठीक है। स्टोइक्स कहते थे कि हम जन्म से ही खुद से प्यार करते हैं, अपनी देखभाल करते हैं, ये स्वाभाविक है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हमारी तर्क शक्ति विकसित होती है, ये अपनेपन का दायरा फैलता जाता है, अपने शरीर से, फिर परिवार से, समाज से, और आखिर में पूरी मानवता से।
पूरी मानवता से,
हाँ। और इस पूरी प्रक्रिया का जो आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव है वो है ये समझना कि हमारा असली स्वरूप, हमारी सच्ची पहचान हमारा शरीर, पैसा या शोहरत नहीं है।
तो क्या है?
हमारी तर्क शक्ति, वही चीज जो हमें उस बड़े ब्रह्मांडीय तर्क लोगोस से जोड़ती है। और जब हम ये समझ जाते हैं तब हम सद्गुण को ही अपना एकमात्र सच्चा अच्छा मानने लगते हैं।
यहीं पर उनका वो सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार आता है, है ना?
बिल्कुल
जी।
इससे वो एडियोफोरा यानी उदासीन चीजें कहते थे।
उदासीन मतलब इनसे फर्क नहीं पड़ता।
फर्क पड़ता है पर अलग तरह से।
हाँ,
हाँ। इनमें से कुछ चीजें पसंदीदा हो सकती हैं, जैसे अच्छी सेहत या जरूरत भर पैसा, और कुछ नापसंदीदा जैसे बीमारी या गरीबी। लेकिन असली लक्ष्य इन पसंदीदा चीजों को पाना नहीं है।
तो फिर लक्ष्य क्या है?
लक्ष्य है उन्हें सही तरीके से सद्गुण और तर्क के साथ चुनना। असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर है, हमारी आत्मा की सद्गुणी अवस्था में। इसी को वो यूडेमोनिया कहते थे, सच्ची मानवीय खुशी, या कह लीजिए जीवन का असली मकसद।
तो अगर कोई सद्गुणी है तो वो गरीब या बीमार होते हुए भी खुश रह सकता है। ये थोड़ा मुश्किल लगता है मानने में।
हाँ, क्योंकि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, सिर्फ आंतरिक सद्गुण पर करती है। अब बात करते हैं भावनाओं की, या जिन्हें वो जुनून पथे कहते थे।
हाँ, ये भी बहुत सुना है कि स्टोइक भावनाओं को दबाते हैं।
दबाते नहीं, यही तो गलत फहमी है। स्टोइक्स इन्हें बेकाबू भावनाएं नहीं बल्कि तर्क की गलतियां या गलत निर्णय मानते थे। कॉग्निटिव एरर्स आप कह सकती हैं।
भावनाओं को गलत निर्णय मानना है, ये कैसे? उदाहरण दे सकती हैं?
बिल्कुल। उनका कहना था कि डर, गुस्सा या बहुत ज्यादा खुशी जैसी जो तीव्र भावनाएं हैं, वो तब पैदा होती हैं जब हम किसी उदासीन चीज जैसे पैसा खोना या तारीफ मिलना को गलती से बहुत बड़ी बुराई या भलाई मान लेते हैं।
अच्छा।
जैसे अगर हम मानते हैं कि पैसा खोना भयानक है, दुनिया उजड़ गई, जबकि स्टोइक नजरिए से ये सिर्फ एक नापसंदीदा उदासीन चीज है, तो हमें डर और चिंता महसूस होगी। तो लक्ष्य इन भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि उन गलत निर्णयों को ठीक करना है जिनसे ये पैदा होती हैं।
ओह, तो जड़ पर काम करना है।
हाँ, इसे वो अपाथिया कहते थे, यानी जुनूनों से मुक्ति, एक तरह की मानसिक शांति और स्पष्टता, रोबोट बनना नहीं।
ये तो काफी हद तक आजकल की कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसा लग रहा है। वो भी तो यही कहती है कि हमारी सोच हमारी भावनाओं को प्रभावित करती है।
हाँ हाँ, काफी समानता है। बहुत पहले उन्होंने ये बात समझ ली थी, और आखिर में उनका आदर्श था स्टोइक ऋषि, एक ऐसा काल्पनिक व्यक्ति जो पूरी तरह तर्कसंगत हो, जुनूनों से मुक्त हो, हमेशा सही काम करे और हर हाल में खुश रहे।
और समाज, क्या वो समाज से कटकर रहने को कहते थे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका कॉस्मोपॉलिटनिज्म का विचार था, यानी हम सब एक ही ब्रह्मांडीय शहर के नागरिक हैं। क्यों? क्योंकि हम सब में वही तर्क का अंश है, इसलिए हमारे कुछ सामाजिक कर्तव्य भी नहीं हैं। हमें न्याय और भाईचारे के साथ रहना चाहिए, ये सिर्फ अपने अंदर झांकने वाला दर्शन नहीं था।
वाह, तो ये तो वाकई एक पूरा पैकेज है। तर्क, ब्रह्मांड, नैतिकता, भावनाएं, समाज, सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर हम इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें, कुछ की टेक अवेज निकालें तो वो क्या होंगी?
मेरे लिए सबसे पहली और जरूरी बात है दर्शन की एकता। आप स्टोइक वाद को टुकड़ों में नहीं समझ सकते। तर्क, भौतिकी और नैतिकता, ये सब आपस में गुथे हुए हैं। नैतिकता हवा में नहीं तैर सकती, उसकी जड़ ब्रह्मांडीय समझ में है।
हाँ, ये पॉइंट तो बहुत जरूरी है। दूसरी बात, शायद वो प्रकृति के अनुसार जीने का असली मतलब, ये सिर्फ यू नो नेचर वॉक पर जाना नहीं है।
बिल्कुल नहीं, इसका मतलब है अपनी मानवीय तर्क शक्ति के अनुसार जीना, और साथ ही ब्रह्मांड को चलाने वाले उस बड़े तर्क लोगोस के साथ तालमेल बिठाना। सद्गुण मतलब एक तरह से ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ हार्मनी में जीना।
तीसरा, सद्गुण ही सब कुछ है। वर्च्यू इज द ओनली गुड, यही एकमात्र असली अच्छाई है, और यही हमें वो अंदरूनी शांति और मजबूती देता है जो बाहरी किस्मत या हालात पर निर्भर नहीं करती। ये आज की दुनिया में जहां हम भारी चीजों के पीछे इतना भागते हैं बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल। चौथा, तर्क ही इंसान की शान है। हम में उस दिव्य ब्रह्मांडीय तर्क का अंश है। हमारी ये जो सोचने समझने की शक्ति है, इसे बेहतर बनाना, इसे निखारना ही हमारा सबसे ऊंचा लक्ष्य है।
और पांचवा, जिसे हमने अभी छुआ, भावनाएं असल में हमारा निर्णय है। वो जो तीव्र परेशान करने वाली भावनाएं हैं, वो हमारी सोच की गलतियां हैं। अगर हम अपनी सोच को ठीक करें, अपने जजमेंट्स को ठीक करें, तो हम अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं। ये हमें अपनी भावनाओं का गुलाम बनने की बजाय उनका मालिक बनने की ताकत देता है।
हाँ, ये पांच बातें मेरे ख्याल से काफी अहम है।
इन विचारों को कुछ बहुत यादगार पंक्तियों में भी पिरोया गया है ना। इनवुड की किताब ऐसे कई उदाहरण देती है, जैसे वो रोमन सम्राट और स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस। उनका कहना है, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे मन पर है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम्हें शक्ति मिलेगी।
हाँ, ये सीधे सीधे उस बात पर आता है कि हमारा कंट्रोल कहाँ है और कहाँ नहीं। बाहरी दुनिया हमारे वश में नहीं है, पर हमारा मन, हमारी प्रतिक्रियाएं, वो हमारे वश में है। असली ताकत वही है।
या फिर एपिक्टेटस, जो एक गुलाम से दार्शनिक बने थे, उनका कहना था, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होता है, बल्कि ये है कि तुम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो। फिर वही बात, असली खेल हमारी प्रतिक्रिया का है, हमारे रिस्पॉन्स का है।
और मार्कस ऑरेलियस का एक और विचार जो मुझे बहुत पसंद है, सबसे अच्छा बदला ये है कि तुम अपने दुश्मन जैसे न बनो।
वाह।
यानी मुश्किल हालात में भी, जब कोई आपके साथ बुरा करे, तब भी अपने नैतिक स्तर को बनाए रखना, ये बदला लेने से ज्यादा जरूरी है। अपना कैरेक्टर बचाना है।
ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत गहरा है, लेकिन आज की जिंदगी में, मतलब रोजमर्रा की भागदौड़ में ये कैसे काम आ सकता है? क्या इसका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल है?
बिल्कुल है। सबसे पहले तो भावनात्मक संतुलन लाने में। जब भी हम परेशान हों, गुस्सा हों, निराश हों, हम रुक कर खुद से पूछ सकते हैं, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ? क्या मैं किसी बाहरी चीज को गलत महत्व दे रही हूँ?
जैसे
नौकरी चली गई, ये घटना है। दुख तब होता है जब हम सोचते हैं, अब सब खत्म हो गया, मैं बेकार हूं। स्टोइक अभ्यास हमें इस सोच को चुनौती देना सिखाता है। ये सिर्फ एक नापसंदीदा उदासीन घटना है, दुनिया का अंत नहीं।
हाँ, या दफ्तर में किसी बात पर तनाव हो, हम सोच सकते हैं कि क्या चीज मेरे कंट्रोल में है, मेरा काम, मेरा व्यवहार, मेरी कोशिश, और क्या नहीं, बॉस का मूड, सहकर्मी की राय, नतीजा। अपना ध्यान वहीं लगाएं जहां फर्क पड़ सकता है। इसे ही वो नियंत्रण का विभाजन, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल कहते हैं।
रिश्तों में भी ये बहुत काम आता है। वो जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म का आइडिया है, वो हमें याद दिलाता है कि मतभेदों के बावजूद हम सब एक ही मानवता का हिस्सा हैं। इससे सहानुभूति बढ़ती है। झगड़ों में हम अपनी उम्मीदों और अपने जजमेंट्स पर सवाल उठा सकते हैं कि कहीं हम ज्यादा तो नहीं मांग रहे।
और बड़े फैसले लेते समय भी, जैसे करियर चुनना या कोई बड़ा खर्च करना, क्या मैं सिर्फ पैसे या आराम, जो पसंदीदा उदासीन है, के पीछे जा रहा हूं, या मैं ईमानदारी, न्याय जैसे सद्गुणों को प्राथमिकता दे रहा हूं? ये हमें सही दिशा दिखा सकता है।
और हाँ, मुश्किल हालात का सामना करने में, जैसे बीमारी, कोई नुकसान या बुढ़ापा, ये हमें सिखाता है कि हम बाहरी परिस्थितियों को शायद ना बदल पाएं, पर हम अपनी प्रतिक्रिया और अपने नजरिए को हमेशा चुन सकते हैं। हमारी गरिमा बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती।
इस पूरी बातचीत के बाद मेरे लिए जो सबसे बड़ी, कह सकते हैं, हैरानी की बात है, वो ये है कि स्टोइकवाद कितना ज्यादा व्यवस्थित और गहरा है। ये सिर्फ मुश्किलों से निपटने के कुछ नुस्खे या हैक्स नहीं है।
हाँ,
ये तो दुनिया और इंसान की जगह के बारे में एक पूरा नजरिया है। खासकर ये देखकर हैरानी हुई कि उनकी नैतिकता उनकी भौतिकी और तर्क से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। ये मैंने पहले कभी ऐसे नहीं सोचा था।
और मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि सच्ची आजादी, सच्ची फ्रीडम, वो बाहरी चीजों को कंट्रोल करने में नहीं है। वो अपने मन, अपने निर्णयों और अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने और सही दिशा देने में है। स्टोइकवाद सिर्फ सहना नहीं सिखाता, बल्कि सही मायने में फलना फूलना सिखाता है, यूडेमोनिया सिखाता है। और ये खुशी सिर्फ हमारे अंदर के सद्गुण से आ सकती है। इनवुड ने इस गहरी समझ को वापस लाने का वाकई बहुत जरूरी काम किया है।
तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं, सोचिएगा इस पर। अगर हम स्टोइक नजरिए को थोड़ा गंभीरता से लें, कि ब्रह्मांड तर्कसंगत है और एक निश्चित योजना से चलता है, और हमारा काम उसके साथ तालमेल बैठाना है, तो ये हमारे रोज के छोटे बड़े फैसलों और जिंदगी के लक्ष्यों को कैसे बदल सकता है? क्या यह सोचना कि सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा है वाकई में बोझ कम कर सकता है? क्या यह एक तरह की आजादी दे सकता है?
जरूर सोचिएगा। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।